जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। भट्टाचार्य कहे भक्ति सम नहे मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुखे रहय दंड केवल। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जीवन ग्रह ऐसी भक्त प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। भट्टाचार्य सार्वम भट्टाचार्य ने कहे कहा भक्ति भक्ति सम समान नहे नहीं मुक्ति मुक्ति का फल फल भगवत भक्ति भगवत भक्ति विमुखेर जो विमुख है हय है दंड दंड केवल केवल। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। सार्वम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, शुद्ध भगवत प्रेम का उदय जो भक्ति का फल है वह भौतिक बंधन की मुक्ति से कहीं बढ़कर है। जो भक्ति से विमुख है उनके लिए ब्रह्म तेज में समा जाना एक प्रकार का दंड है। तात्पर्य, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, सिद्ध लोकस्तु तमसा पार यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हता। सिद्ध लोक ब्रह्म लोक में दो प्रकार के जीव रहते हैं, वे जो पूर्व जन्मों में असुर होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मारे जाते हैं, तथा वे जो भगवान के निर्विशेष तेज का भोग करना चाहते हैं। तमसा शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के आवरण। भौतिक तत्वों की परतें ब्रह्मांड को आच्छादित करती हैं और निर्विशेष ब्रह्म तेज इन परतों के बाहर होता है। यदि कोई भगवान के निर्विशेष तेज में ही रहने का इच्छुक है तो वह भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रहता है। इसीलिए भक्तगण निर्विशेष ब्रह्म तेज में समाने को एक प्रकार का दंड ही मानते हैं। कभी कभी भक्तगण ब्रह्म तेज में समा जाने के विषय में सोचते हैं, अतएव वे सिद्ध लोक को प्राप्त होते हैं। अपने निर्विशेष समझ के कारण वास्तव में दंड मिलता है। सार्वम भट्टाचार्य अगले श्लोकों में मुक्ति पद तथा भक्ति पद का अंतर बताना जारी रखते हैं। हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का प्रातःकालीन श्री चैतन्यमृत कक्षा में स्वागत है। और आज ये जो कई महीनों से हम लीला सुन रहे हैं सार्वम भट्टाचार्य की मुक्ति, अगर इसको समापन हो जाएगा और अगले सप्ताह से दक्षिण भारत की महाप्रभु की यात्रा, तो ये लीला प्रारंभ होगी। तो हर अध्याय के अंत में कृष्णास कविराज गोस्वामी ये प्यार लिखते हैं, श्री रूप रघुनाथ पद यार आश चैतन्य चरितामित कहे कृष्णदास। तो इसमें रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी और अन्य वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं और उनकी कृपा की कामना करते हुए चैतन्य वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, तो आप सबका मैं आशीर्वाद लेकर के और आपकी प्रसन्नता के लिए जो है इस के ऊपर कुछ टिप्पणी करने का प्रयास करूँगा। और ऐसे तो आज इस लीला को समापन करेंगे। पिछली बारी आपने सुना रहेगा कि सार्वम भट्टा बहुत समय से हम लीला सुन रहे हैं, महापुर संन्यास लेकर के आते हैं और फिर सार्वम भट्टाचार्य से उनका विवाद होता है और फिर सार्वम भट्टाचार्य जो है भक्त बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक इम्पर्सनलिस्ट से जो है भक्त में। और बिल्कुल भक्ति मतलब हृदय को बिल्कुल कोमल बना देती है, तो सार्वम भट्टाचार्य का हृदय उसी प्रकार बन जाता है। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आते हैं उनके घर पे, और सार्वम भट्टाचार्य ने उस समय तो जस्ट बिस्तर से उठे होते हैं, ना स्नान किया होता है ना दंत धावन किया होता है, लेकिन तुरंत ही महाप्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं सार्वम भट्टाचार्य की, सारे वैदिक नीति नियम को छोड़ करके उनकी इतनी श्रद्धा है महाप्रसाद में इत्यादि। तो फिर चैतन्य महाप्रभु की वो स्तुति लिखते हैं जो दो फेमस श्लोक, ऐसे तो 100 श्लोक लिखते हैं वो, उसमें दो फेमस श्लोक यहाँ पे कोट किए रहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। ये अलग से पाम लीफ पे लिखते हैं, पहले 100 श्लोक पहले कोट करते हैं, बाद में दो और पाम लीफ पे लिख करके। तो वो श्लोक विमला प्रसाद ने टिप्पणी की थी। फिर एक दिन सार्वम भट्टाचार्य सुबह सुबह एक दिन सार्वम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और भागवतम से ब्रह्मा जी की स्तुति में से एक श्लोक उद्धृत करने लगे और उस श्लोक को थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपूर्विविदधन् नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भाक। तो ये श्लोक था मुक्ति पदे सदाय भाक, लेकिन सार्वम भट्टाचार्य उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं और बोलते हैं भक्ति पदे सदाय भाक। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बोलते हैं कि इस श्लोक में तो मुक्ति पदे आया था, आपने चेंज क्यों कर दिया, भक्ति पदे क्यों कर दिया। तो यही भट्टाचार्य जो है आज उत्तर दे रहे हैं और इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो वो कह रहे हैं, शुद्ध भगवत प्रेम का उदय जो भक्ति का फल है, वह भौतिक बंधन की मुक्ति से कहीं बढ़कर है। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना या भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन को जीना, क्योंकि अन्य सभी जितनी इच्छाएं हैं वो हम अपनी संतुष्टि के लिए जो करते हैं उसे भक्ति नहीं बोला जाता। जैसे भागवत में बोला, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्ष अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। जहां पे कुछ हेतु हो, अपना कारण हो, अपना निजी स्वार्थ हो, तो उसको परम धर्म नहीं बता सकते, उसे शुद्ध भक्ति नहीं बोल सकते। तो जो है मुक्ति जो है इस भौतिक बंधन से छुटकारा भी वास्तविकता में देखा जाए तो एक प्रकार की सेल्फिश डिजायर है, स्व दुख निवृत्ति की इच्छा है। मोक्ष मुक्ति जो है स्व दुख निवृत्ति, तो ये भी एक सेल्फिश डिजायर है, ये भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है उस प्रकार से। तो इसलिए हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मुक्ति के ही के पीछे पागल थे या उसी के भक्त थे या वही उनकी एस्पिरेशन थी, लेकिन अभी क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु कृपा उनको प्राप्त हो गई है तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जो भक्ति से विमुख है उनके लिए ब्रह्म तेज में समा जाना एक प्रकार का दंड है। वो कह रहे हैं कि मुक्ति या ब्रह्म तेज में समा जाना तो एक पनिशमेंट है किसी व्यक्ति के लिए, ये फल नहीं है, ये तो कोई रिवॉर्ड नहीं है, एक्सेप्ट बिग पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा से कोई व्यक्ति विमुख हो तो उसमें क्या आनंद है। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में ब्रह्मांड पुराण से श्लोक कोट करते हुए कह रहे हैं कि सिद्ध लोक या ब्रह्म लोक या ब्रह्म ज्योति में कौन रहते हैं, दो प्रकार के जीव रहते हैं, एक तो जो असुर होते हैं और भगवान के द्वारा मारे जाते हैं। तो जैसे हम अघासुर लीला के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार अघासुर का जब वध हो गया तो उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति जो है निकली और भगवान के शरीर में लीन हो गई, या ऐसे शिशुपाल के वध के दौरान भी सबने देखा इसी प्रकार का। तो एक तो उस प्रकार के लोग रहते हैं और तथा वे दूसरा जो भगवान के निर्विशेष तेज का भोग करना चाहते हैं, ऐसा प्रभा लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फिर आगे अभी इसी श्लोक इसी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य और बोल रहे हैं, कृष्ण र विग्रह यही सत्य नहीं माने, यही निंदा युद्धादि का करे तारसने, से दुर्दंड है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, तार मुक्ति फलन है यही करे भक्ति। भट्टाचार्य ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को न मानने वाले निर्विशेषवादी तथा भगवान की निंदा करने और उनसे सदैव युद्ध करने वाले असुर ब्रह्म ज्योति में समाकर दंडित होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो कह रहे तो निर्विशेषवादी लोग हैं जो भगवान की निंदा करते हैं, बोलते भगवान का आकार नहीं है, भगवान है लेकिन देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि भगवान है। मतलब इनडायरेक्टली इम्पर्सनलिज्म इज नथिंग बट कवर्ड एथिज्म, कि वो बोलते हैं कि भगवान जो है हैं लेकिन कुछ करने के लायक नहीं है, तो ऐसा उनका रहता। तो वो भगवान की एक प्रकार से परोक्ष रूप से निंदा है भगवान की। तो फिर तो ऐसे लोग या जो भगवान से युद्ध करते हैं ऐसे लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो स्वाभाविक ऐसे लोग पनिश्ड, यही इसलिए पनिशमेंट भी हम समझ सकते हैं कि क्यों सजा है, जो लड़ाई करेगा निंदा करेगा उसी व्यक्ति सजा मिलती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? कि ब्रह्म ज्योति विलीन नहीं होता, वो भगवान के साथ भगवान की प्रेम में सेवा में लगा रहता है। यद्यपि से मुक्ति है या पंच प्रकार सालोक्य सामीप्य सारूप्य सारशी सायुज्य आर, मुक्ति पांच प्रकार की है, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सारशी सायुज्य। तात्पर्य सालोक्य का अर्थ है, तो पांच प्रकार की मुक्ति बताई गई है, तो सालोक्य का अर्थ है भौतिक मुक्ति के बाद उस लोक को जाना जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं, यानी भगवान के लोक में निवास करना। सामीप्य का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बनना, भगवान के बिल्कुल समीप ही रहना। सारूप्य का अर्थ है भगवान जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त करना। सारष्टी का अर्थ है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। सायुज्य का अर्थ है भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना। ये मुक्ति के पांच प्रकार हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं मुक्ति के पांच प्रकार। सालोक्याधिचारी यदि हय सेवा द्वार तभु कदाचित भक्त करे अंगीकार। यदि शुद्ध भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का अवसर मिले तो वह कभी कभी सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य या सारष्टी मुक्ति को तो स्वीकार करता है, किंतु सायुज्य को कभी नहीं। तो सायुज्य मुक्ति है भगवान में लीन होने वाली, इसको तो कभी स्वीकार ही नहीं करता। जैसा कि प्रबोधानंद सरस्वती भी कहते हैं कैवल्यम नरकायते, कि जो इस प्रकार की मुक्ति है तो नरक के समान है, इट इज हेलिश, किंतु सायुज्य को कभी नहीं। और फिर बोल रहे हैं सार्वम भट्टाचार्य क्यों, सायुज्य सुनीते भक्तेर हयक। वैसे तो भक्त जो है ये चार प्रकार की मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन हाँ यदि कभी कभी सेवा के लिए, सेवा करने का अवसर मिले तो वो स्वीकार करते हैं। अभी आगे भी श्लोक कोट करेंगे भागवतम में से, जहां कपिल देव मुनि देवहूति माता को बोलते हैं कि यदि मैं भी भगवान पुरुष, भगवान भी स्वयं मुक्ति देते हैं तो भी भक्त स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्त को बड़ा विशेष रस प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने में, दिव्य आदान प्रदान के अंदर। सायुज्य सुनीते भक्तेर हय गृणा भय नरक बांछ ये तबो सायुज्य नालय। शुद्ध भक्त तो सायुज्य मुक्ति का नाम भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसे भय तथा घृणा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त भगवान के तेज में समा जाने की अपेक्षा नरक जाना पसंद करेगा। सारों भट्टाचार्य इतना स्ट्रांगली लिख रहे हैं कि वो नरक जाना पसंद करेगा, लेकिन ब्रह्म तेज में मिलना नहीं चाहेगा। तात्पर्य श्रील प्रबोधानंद सरस्वती का कथन है कैवल्यम नरकायते, निर्विशेषवादियों की भगवान के तेज के साथ एक हो जाने की धारणा नरक तुल्य है। अतएव पांच प्रकार की मुक्तियों में से प्रथम चार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साक्षी उतनी अवांछनीय नहीं है, मतलब अवांछनीय है लेकिन उतनी अवांछनीय नहीं है, क्योंकि ये भगवान की सेवा का साधक बन सकती हैं। किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त इनको भी अस्वीकार कर देता है, वह तो जन्म जन्मांतर कृष्ण की सेवा में ही लगे रहना चाहता है, वह जन्म के चक्र को रोकने का अधिक इच्छुक नहीं होता, क्योंकि वह नारकी अवस्था में भी भगवान की सेवा करने का इच्छुक बना रहता है। इसीलिए शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति से घृणा करता है और उससे भयभीत रहता है। सायुज्य मुक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपराध के कारण प्राप्त होती है, इसलिए शुद्ध भक्त के लिए यह वांछनीय नहीं है। कि किसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, ब्रह्म तेज में लीन होता है, जो भगवान की भक्ति के प्रति अपराध करता है, इसलिए शुद्ध भक्त से चाहता नहीं है। और हम भागवतम के अंदर अनेकों उदाहरण पढ़ते हैं शुद्ध भक्तों के, जैसे चित्रकेतु महाराज का उदाहरण, जब उन्हें श्राप मिलता है और पार्वती देवी श्राप देती है कि आप जो है असुर बन जाओ, वो अभी अभी भगवान शंकरचंद के दर्शन प्राप्त करके आए, बोले असुर बन जाओ आप, लेकिन उनको कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा है कि नहीं, और वो असुर उन्हें प्राप्त करते हैं। तब शिव जी उनके गुणगान करते हुए बोलते हैं नारायण पदा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। शिव जी बोल रहे हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, जो नारायण परायण है, जो भगवान के भक्त हैं, वो कहीं भी किसी भी स्थिति से भयभीत नहीं होते। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे नरक में हो, अपि तुल्यार्थ दर्शन, उनके लिए एक समान है, क्योंकि वो हर जगह क्या करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की सेवा में रत रहेंगे। और भगवान की सेवा में रत रहने के कारण उन्हें जो है अन्य सारी चीजें बहुत ही तुच्छ नगण्य प्रतीत होती हैं। कैसी कैसी नगण्य प्रतीत होती हैं, प्रबोधन सरस्वती बता रहे हैं कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्काट दंष्ट्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरम एवस्तु महाम। बोल रहे जिसको चैतन्य महाप्रभु कृपा कटाक्ष प्राप्त होती है, कृपा प्रदान होती है, उसके लिए ये जो सायुज्य मुक्ति है तो नरक के समान है। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, जो स्वर्ग का सुख है, जो अनंत स्वर्ग का जो अपार सुख है, असीमित सुख है, उनके लिए कैसा है, आकाश पुष्पायते। आकाश में फूल कौन से रंग के होते हैं, आकाश के फूल को किसी रंग के, आकाश में फूल होते ही नहीं है, तो ये कपोल कल्पना है, फैंटास्मगोरिया, एक मनोकल्पना है। तो स्वर्ग के अंदर सुख है ये उनके लिए ऐसा ही होता है बिल्कुल। और दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्काट दंष्ट्रायते, वो बोल रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो तो इंद्रिय निग्रह और मन को निग्रह करने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं। जय श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय, श्री शारदाधिकार मन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौणताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए तो इंद्रियां किस प्रकार है जैसे किसी सांप विषैले सांप के दांत तोड़ दिए जाएं, क्योंकि उनकी इंद्रियां तो है भगवान की सेवा में रत रहने का शुद्ध हो जाती हैं। और फिर वो बोल रहे हैं कि विश्वम पूर्ण सुखायते, भगवान ही बोले दुखालय मशाश्वतम, लेकिन प्रभु सरस्वती कह रहे हैं कि ये जो विश्व है उनको लगता है पूरे सुख से सुख पूर्ण सुखायते, कि इस विश्व में तो बहुत सुख है। और विधि महेंद्राश्चि च कीटायते, अब ब्रह्मा और इंद्र के जो समान हैं ये लगते कीड़े के समान लगते हैं, नो बेटर देन इंसेक्ट्स। किसको? यत कारुण्य कटाक्ष वै भवताम, कि जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा कटाक्ष प्राप्त हुई है उसके लिए सारी सुख सारी ऐसी चीजें बड़ी बड़ी चीजें जो अन्य लोगों के लिए एस्पिरेशन हो सकती है वो उनके लिए जो है एकदम नगण्य तुच्छ बन जाती है। तो इससे हमें एक चीज पता लगती है, समझ सकते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है वो वही असली धन है। बाकी हम कुछ भी चाहें बड़ी बड़ी चीजें उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? चाहे वो फिर मुक्ति भी क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्म इंद्र इत्यादि के पोस्ट पोजिशन क्यों ना हो, चाहे वो अपने मन का कंट्रोल करने का बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा क्यों ना हो, ये सब जो है चैतन्य महाप्रभु कृपा के सामने बिल्कुल नगण्य है। तो हमारा वो एस्पिरेशन है, होना चाहिए प्रयास। तो यही हम चैतन्य चरितामृत के अंदर जो है देखते हैं। तो आगे फिर वो और बता रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कि शुद्ध भक्त साहिब जी मुक्ति का नाम भी सुनना नहीं चाहता। ऑफकोर्स हमें तो बोलना पड़ रहा है क्योंकि चैतन्य में लिखा है और वो भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहता शुद्ध भक्त। ब्रह्म ईश्वर सायुज्य द्वित प्रकार, ब्रह्म सायुज्य हित ईश्वर सायुज्य धिक्कार। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आगे कहा, सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की है, ब्रह्म तेज में समा जाना और भगवान के शरीर में समा जाना। भगवान के शरीर में समा जाना तो उनके तेज में समा जाने से भी अधिक निंदनीय है। तो दो प्रकार की मुक्ति बता रहे हैं, एक है तेज में विलीन हो जाना और एक भगवान के शरीर में विलीन हो जाना। और वो कह रहे हैं कि भगवान के शरीर में विलीन हो जाना तो और भी निंदनीय है, इट्स वेरी अबोमिनेबल। तात्पर्य, मायावादी वेदांतों के अनुसार जीव की चरम सफलता निर्विशेष ब्रह्म में समा जाना है। निर्विशेष ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का शारीरिक तेज ब्रह्मलोक या सिद्ध लोक के नाम से विख्यात है। ब्रह्म संहिता 5:40 के अनुसार यस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटेश, भौतिक ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर की किरणों से उत्पन्न होते हैं। पतंजलि के नियमों का पालन करने वाले योगी परम सत्य के व्यक्तित्व तो को तो मानते हैं, किंतु वे भगवान के दिव्य शरीर में समा जाना चाहते हैं, यही उनकी मनोकामना रहती है। भगवान सबसे महान अधिकारी होने के कारण लाखों जीवों को आसानी से अपने शरीर में समा जाने दे सकते हैं। कभी किसी को डाउट हो सकता है कि भगवान के शरीर में कैसे समाएंगे, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान सबसे महान अधिकारी हैं, तो लाखों करोड़ों जीव उनके शरीर में समा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारी वस्तुओं के उद्गम हैं और उनका शारीरिक तेज ब्रह्म ज्योति ब्रह्म लोक या सिद्ध लोक कहलाता है। इस तरह ब्रह्म लोक या सिद्ध लोक ऐसा स्थान है जहां स्फुलिंग के समान अनेक जीव एकत्र हैं जो भगवान के अंश हैं। चूंकि ये जीव अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना नहीं चाहते, अतएव उन सबको मिलाकर ब्रह्म लोक में रहने दिया जाता है। जिस प्रकार सूर्य से निकलने वाले किरणों में अनेक परमाणु कण रहते हैं। तो ये तो प्रभुपाद ने बताया इस पैराग्राफ के अंदर कि ब्रह्म लोक ब्रह्म तेज में जो समा जाते हैं, अगले पैराग्राफ में बताएंगे जो भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं क्यों अधिक निंदनीय है। सिद्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्ध उस व्यक्ति का सूचक है जिसे ब्रह्म तेज का साक्षात्कार हो चुका है और जिसे इसका पूर्ण ज्ञान होता है कि जीव भौतिक परमाणु नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग है। भगवत गीता में इसे ब्रह्मभूत कहा गया है। बद्ध अवस्था में जीव जीव भूत कहलाता है, अर्थात पदार्थ के भीतर प्राण शक्ति। ब्रह्मभूत जीवों को ब्रह्म लोक या सिद्ध लोक में रहने दिया जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी उनका भौतिक जगत में पुनः पतन हो जाता है क्योंकि वे भक्ति में सेवा में लगे हुए नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के श्लोक 10:2:32 द्वारा की गई है, जहां सब देवतागण गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय सद्भावात अविशुद्ध बुद्धयः आरोह कृष्णेन परम पदम ततः पतंति अधानादित युष्मदांग्रयः। ये आधे मुक्त जीव, प्रबल लिख रहे हैं आधे मुक्त जीव, ये सेमी लिबरेटेड सोल्स या दोज इमेजिन, जो इमेजिन करते हैं कि हम मुक्त हैं, मुक्त होने का झूठा दावा करते हैं, किंतु जब तक भगवान की भक्ति में सेवा नहीं की जाती जब तब तक जीव भौतिक रूप में दूषित बना रहता है, क्योंकि उसके अंदर आई सेंटर्डनेस हमेशा रहती है। कि कैसे मैं दुख से निवारण हूं, मैं मुक्त हूं, मैं सिद्धि प्राप्त करूं या मैं शांति से रहूं, उसमें कृष्णानुकूल आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता वाला जो सेंटर पॉइंट है वो मिस हो जाता है उसके अंदर, इसीलिए वो भौतिक दूषण बना रहता है उसके अंदर। इसीलिए जी विमुक्त मानिन कहे गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे अपने आप को भ्रांतिवश मुक्त मानते हैं, यद्यपि उनकी बुद्धि अभी भी निर्मल नहीं हुई है। यद्यपि ये जीव सिद्ध लोक तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु वे वहां स्थायी रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि वे आनंद से विहीन होते हैं। हो सकता है वहां सत औचित हो लेकिन आनंद नहीं है वहां पे, इसीलिए वहां पे वो टेम्पररीली वहां पे रहते हैं। इट्स मेटास्टेबल स्टेट, क्वासी क्या मेटास्टेबल स्टेट, हाँ अभी वो एक स्टेबल स्टेट नहीं है, इट्स नॉट परमानेंटली स्टेबल स्टेट। ये जीव बहुत ब्रह्मभू स्थिति पर होने पर भी तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शारीरिक तेज के रूप में भगवत साक्षात्कार करने पर भी भगवान की सेवा की उपेक्षा करने के कारण नीचे गिर जाते हैं। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है उसका वे ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। आनंद से वंचित रहने के कारण वे भौतिक जगत का भोग करने के लिए नीचे आ जाते हैं। यह अवश्य ही मुक्त लोगों के लिए पतन है। भक्तगण ऐसे पतन को नरक जाने के समान मानते हैं। पतंजलि योग के अनुयायी वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान के विषय में जानते हुए भी उनकी सेवा नहीं करना चाहते। अतएव इनकी स्थिति तो उनसे भी बदतर है जो भगवान के तेज में समा जाना चाहते हैं। कि भगवान के तेज में समा जाना चाहते हैं, उनको तो यही है कि हाँ ठीक है ब्रह्म तेज में समा जाना है, लेकिन ये लोग जानते हैं भगवान का शरीर है, भगवान एक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी भगवान को शरीर में मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए वो और निंदनीय है, उनकी स्थिति और बदतर है। पहले वाले जो लोग हैं उनको तो भगवान के तेज के बारे में ही ज्ञान था, खाली ब्रह्मेति ब्रह्म स्तर तक ज्ञान था, तो चलो उसमें लीन हो चाहते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं था कह सकते। लेकिन ये तो स्टार्टिंग में भगवान के शरीर में जानते हैं और उसमें मिलना चाहते हैं। ये योगी भगवान के शरीर में समा जाने हेतु भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप पर ध्यान करते हैं। आप सोचिए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप पर ध्यान करते हैं, और पतंजलि पद्धति में भगवान के स्वरूप को क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया है। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो कष्टमय भौतिक जीवन के भागी नहीं होते। योगी जन अपने मंत्र में परम पुरुष की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं। स पूर्वे शाम अपि गुरु कालान अवच्छेदात, अर्थात ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च होता है और काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस तरह पतंजलि पद्धति के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं, तथापि उनके अनुसार पुरुषार्थ शून्यानां प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रीति। वे मानते हैं कि सिद्ध अवस्था में पुरुष की धारणा का लोप हो जाता है। उनके वर्णन के अनुसार चित्ति शक्ति इति, इनका विश्वास है कि पूर्ण बन जाने पर कोई भी पुरुष नहीं बना रह सकता, ये उनका धारणा है। यह योग पद्धति इसलिए निंदनीय है क्योंकि इसकी अंतिम धारणा निर्विशेष है। ये योगी प्रारंभ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मानते हैं, किंतु अंत में निर्विशेष बनने के लिए इस विचार को त्याग देते हैं। अब सोचिए पहले प्रारंभ में तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मानते हैं, चतुर्भुज को ध्यान करते हैं, लेकिन अंत में इसे त्याग देते हैं, तो इसीलिए इनकी स्थिति बहुत बदतर। ये सबसे बड़े अभागे हैं, क्योंकि परम सत्य की साकार धारणा से अवगत होते हुए भी वे भगवान की भक्ति में सेवा की उपेक्षा करते हैं और इस तरह पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत द्वारा होती है। आरुह कृष्ण परम पदम ततः पतंत अधो अनाद युष्मदांग्रय। भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करने के कारण ये योगी पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं, पतंत अधः। अतः योग का यह मार्ग निर्विशेषवादियों के मार्ग से भी बदतर है। इसकी पुष्टि भगवान कपिल देव के कथन से भी होती है, जो श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक में व्यक्त हुआ है। और हमें लग रहा होगा कि ऐसे लोग तो पहले हुआ करते थे, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं, भगवान से एक होना चाहते हैं और भगवान के ब्रह्म तेज मिलना चाहते हैं। ये बड़े अभागे व्यक्ति हैं, अधिकांश लोग जो है यही करना चाहते हैं, तो जो है बहुत अभागे व्यक्ति हैं। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, और वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सबको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान के साकार रूप को जानना,
शिक्षा
भगवान के साकार रूप को जानना और सेवा करने का जो मौका है, ये तो किसी बहुत ही विरले व्यक्ति को जो है प्राप्त होता है, जो है किसी बड़े ही कोई बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है उसको ये प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सार्वम भट्टाचार्य आगे भागवतम में से कोट कर रहे हैं, सालोक्य साक्षी सामीप्य सारूप्यतैकम एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। सार्वम भट्टाचार्य ने अंत में कहा, समस्त प्रकार की मुक्तियां प्रदान किए जाने पर भी शुद्ध भक्त उन्हें स्वीकार नहीं करता, वह भगवान की सेवा में लगे रहने से ही संतुष्ट रहता है। हो सकता है कभी कभी मिस्कॉन में देखते हैं भक्त सेवा करते करते फेड आउट हो जाते हैं, तो बोलते हैं हमें शांति चाहिए। ऐसा कभी कभी हमें अनुभव होता है कि जब कभी कभी सेवा करते हुए भक्त थोड़े जो बोलते हैं बहुत सेवा हो गया, परेशान हो गया, थोड़ी शांति चाहिए। लेकिन एक दो तीन दिन शांति अनुभव भी कर लेंगे मान लो, उसके बाद वापस ही सेवा करने में आ जाएंगे वापस। क्यों? उस शांति में कोई आनंद नहीं है, है कि नहीं? एक दो तीन थोड़े घंटे बाद ही फ्रस्ट्रेट फील होना शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं? आप सोचिए अगर इटरनल काल तक हमें ब्रह्म ज्योति में रहना हो तो कितना फ्रस्ट्रेशन है वहां पे, है कि नहीं? वो तो बिल्कुल नरक के समान है। और भगवान की सेवा में चाहे परेशान भी क्यों ना हो व्यक्ति, बहुत कष्ट भी आ रहे होंगे, अभी जन्माष्टमी आएगी, बारिश गिरेगी, पसीना आएगा, सब निर्जल फास्टिंग भी है, लेकिन फिर भी भक्त स्टैटिक रहेगा। फिर उसको बोला शांति से एक जगह एक पंडाल में लगा दिया और आराम से बैठ जाओ यहाँ पे, उसे बैठा नहीं जाएगा, है कि नहीं? वो बिल्कुल चाहे पंखा लगाओ, एयर कंडीशन पंडाल भी क्यों ना हो, नरक के समान रहेगा उसके लिए, है कि नहीं? तो भगवान की सेवा जो है उसमें जो संतुष्टि है वो किसी अन्य चीज में संतुष्टि है ही नहीं। दिक्कत यह है कि हम वो संतुष्टि अन्य कई जगह ढूंढते रहते हैं। जब अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु चरण कमलों की सेवा में संतुष्टि प्राप्त ढूंढेंगे तो हमें प्राप्त होगी, बाकी सब चीजें अपने आप तुच्छ हो जाएंगी, जैसे प्रभु सरस्वती कह रहे हैं। तो अब भगवान इस बोल रहे हैं, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है उनके एक्सप्लेनेशन से, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो भागवतम व्यासदेव के कथन को चेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु थोड़ा इसको जो है इसको ठीक करेक्ट करेंगे। प्रभु कहे मुक्ति पदे आर अर्थ है, मुक्ति पदे शब्द साक्षात ईश्वर कहय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुक्ति पदे शब्द का अन्य अर्थ है, मुक्ति पद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है। मुक्ति पदे यार से ही मुक्ति पद है, किम वम पदार्थ मुक्ति समाश्रय। अनुवाद, चूंकि सभी प्रकार की मुक्तियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में विद्यमान रहती हैं, अतएव वे मुक्ति पद कहे जाते हैं। कि भगवान के चरणों में सारी मुक्तियां रहती है, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? मुक्ति पद। तो जो श्लोक में यूज हो रहा है कि मुक्ति पदे सदाय भाकर, तो वास्तविकता में भगवान को प्राप्त करते हैं ऐसा कहना है। और दूसरा एक अर्थ और भी बताते हैं, एक अन्य अर्थ के अनुसार मुक्ति नौवां विषय है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुक्ति के आश्रय हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जिस पर गीता में पांच मुख्य विषयों पर चर्चा हुई है, उसी प्रकार जो है भागवतम में 10 मुख्य विषय पर चर्चा की गई है। और ये भागवतम के दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चन, श्री उसमें बोल रहे हैं, अत सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तो 10 जो है भागवतम के अंदर विषय है चर्चा करने में, तो 9वां विषय है मुक्ति और भगवान जो है वो 10वें आश्रय तत्व है, वो 10वें विषय है। तो भगवान 9वां विषय के आश्रय हैं, तो ये जो है मुक्ति 9वां विषय है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुक्ति के आश्रय हैं। तो इसीलिए जो है मुक्ति पदे भगवान को द्योतक है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण मुकुंद भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है समस्त प्रकार की मुक्तियां प्रदान करके दिव्य आनंद प्रदान करने वाले। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, जिनमें से 9वें स्कंद में विभिन्न प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है, किंतु 10वां स्कंद मुक्ति की व्याख्याओं का वास्तविक केंद्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में जिनकी चर्चा की गई है उन विषयों में 10वें विषय हैं। चूंकि सभी प्रकार की मुक्तियां श्री कृष्ण के चरण कमलों में वास करती हैं, अतएव वे मुक्ति पद कहे जा सकती हैं। दुई अथे कृष्ण कही केने पाठ फिरी, सार्वभौम कहे ओ पाठ कही तेना पारी, यद्यपि तुमार अर्थ एई शब्दे कया, तथापि आशीलश्य दोषे कह ननायया। यद्यपि मुक्तिर शब्दे मुक्ति शब्देर हय पंचवृत्ति, रूढ़ी वृत्ति कहे तबे सायुज्य प्रतीति। मुक्ति शब्द कहिते मने हय घृणात्रास, भक्ति शब्द कहिते मने हयत उल्लास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चूंकि मैं इन दोनों अर्थों से श्री कृष्ण को समझ सकता हूं तो फिर श्लोक को बदलने से क्या लाभ, कि भाई जब इसका अर्थ से हम आसानी से कृष्ण को समझ सकते हैं तो श्लोक को क्यों बदल रहे हो, व्यासदेव ने कोई गलती नहीं की है ऐसा लिख करके। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं इस श्लोक का वह पाठ नहीं कर पा रहा था जैसे आपने समझाया, ऐसे समझ नहीं पा रहा था। क्यों? तो आगे तात्पर्य आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्यों मैं ऐसा समझ नहीं पा रहा था। यद्यपि आपकी व्याख्या सही है किंतु मुक्ति पद जो ये शब्द है, ये पद में असमंजसता होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहां पे देयर इज अ स्कोप टू बी मतलब टू बी कंफ्यूज्ड, इसको एक्स्ट्रापोलेट करने का जो है स्कोप है मिस इंटरप्रेट करने, सही इंटरप्रेट भी किया जाए तो आगे ही बता रहे हैं। मुक्ति शब्द पांच प्रकार की मुक्तियों का द्योतक है, पांच प्रकार की मुक्तियां ठीक है, किंतु सामान्यतया इसका मुख्य अर्थ सायुज्य की प्रतीति है। जब भी कोई मुक्ति बोलता है तो यही बोला जाता है भगवान में लीन हो जाना, तो इसीलिए सामान्यतः इन जनरल इट इज यूज्ड टू मर्ज इनटू इंपर्सनल ब्रह्मन। तो इसीलिए और जब ऐसी बात मैं सुनता हूं सार्वभौम भट्टाचार्य जो इस मुक्ति के पीछे पड़े हुए थे पूरा जीवन, इसी वेदांत फिलोसफी के पीछे निराकार शंकराचार्य की टीका को जो है पढ़ते थे, प्रचार करते थे सब, तो वो कह रहे हैं मुक्ति शब्द की ध्वनि मात्र से मन में घृणा तथा भय का भाव उत्पन्न होता है, किंतु जब हम भक्ति शब्द कहते हैं तो हमारे मन में दिव्य आनंद की सहज अनुभूति होती है। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो वो कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मुक्ति बोलने से बड़ा जो है मन में हेट्रेड की फीलिंग आने लगती है, लेकिन जब हम भक्ति बोलते हैं तो बड़ा आनंद होता है उससे, है कि नहीं? जैसे हमने अभी उदाहरण दिया आपको, बोला जाए जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, कितना भी टेंशन आएगा सब बहुत बड़े खुश होकर सेवा करेंगे, लेकिन बोला कि नहीं आपको खाली कमरे में बैठना है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन का विषय, बोले नहीं कुछ तो सेवा दे दो, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से शुनिया, तो अब ये सुन के चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। शुनिया हासेन प्रभु आनंदिता मने भट्टाचार्य कैला प्रभु दृढ़ आलिंगने, यह वाक्य सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और तुरंत ही उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भट्टाचार्य का दृढ़ आलिंगन किया। यही भट्टाचार्य पढ़े पढ़ाए मायावादे तार ऐछे वाके स्फूर चैतन्य प्रसादे, लोहा के यावत स्पर्श हेम नहीं करे तावत स्पर्श मणि कहे के हा चिनी ते ना पारे। भट्टाचार्य वैष्णवता देखी सर्वजन प्रभु के जा नील साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, काशी मिश्र आदि यत नीला चलवासी शरण लईला सबे प्रभु पदे आसी, से ही सब कथा आगे करीब वर्णन सार्वभौम करे ये प्रभु र सेवना। जो व्यक्ति मायावाद दर्शन पढ़ने और पढ़ाने का अभ्यस्त था वही अब मुक्ति शब्द से घृणा कर रहा था, यह सब केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हुआ। जब तक स्पर्श मणि या पारस मणि लोहे को अपने स्पर्श सोना न बना दे, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी अज्ञात पत्थर को स्पर्श मणि या पारस मणि के रूप में नहीं जान सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य की दिव्य वैष्णवता देखकर हर व्यक्ति यह जान सका कि चैतन्य महाप्रभु नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इस घटना के बाद काशी मिश्र आदि जगन्नाथपुरी के सारे निवासी महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में आ गए। मैं इसका वर्णन बाद में करूंगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य किस प्रकार महाप्रभु की सेवा में सदा लगे रहते थे। तो ये महाप्रभु का जो है स्पेशल, इस अध्याय में तो बहुत सारे चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन एक चीज है महाप्रभु का जो प्रचार की शैली है, स्प्रीचिंग टू क्लासेस लाइक दैट, कि एक सार्वभौम भट्टाचार्य जो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एक क्या गणमान्य अधिकारी थे जो है कि वेदांत सूत्र पे जिनकी अथॉरिटी थी पूरी, इतनी अथॉरिटी थी कि भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपका संन्यास जो है, आपका सेकंड क्लास संन्यास आश्रम है, मैं इसको बदल के फर्स्ट क्लास संन्यास आश्रम बदल दूंगा, आपने भारतीय संप्रदाय में लिया है, मैं सारस्वत संप्रदाय में इसको आपको संन्यास दे दूंगा। और वो भगवान को, सन्यासी को भगवान को बोल रहे हैं कि आप वेदांत सूत्र पढ़ो और पढ़ाई मैं आपको पढ़ाऊंगा। दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे इनके पास, बड़े बड़े लोग, ये गृहस्थ आश्रम में थे हालांकि, लेकिन सब बड़े बड़े सन्यासियों को वेदांत सूत्र पढ़ाया करते थे। तो ऐसा व्यक्ति यदि परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा, उनके जितने सैकड़ों हजारों फॉलोअर्स होंगे वो भी सब परिवर्तित हो जाएंगे। और मैं ये भी सोच रहा था, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य को परिवर्तित किया तो लीला खत्म हो गई, एक्चुअली जैसे जैसे ये संकीर्तन आनंद आगे बढ़ेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु इज श्योर टू बिकम द मोस्ट पॉपुलर फिगर। और उस समय नॉट ऐसा तो होगा नहीं खाली लोग चैतन्य चरणामृत पढ़ेंगे, बल्कि हम आशा करते हैं हमारे जीवन काल में हुआ तो ठीक है, नहीं तो किसी ना किसी समय में जरूर होगा ऐसा इस संकीर्तन आंदोलन के अंदर, कि जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी हैं, चाहे वो रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, प्रकाशानंद सरस्वती से जो उनकी चर्चा हुई बनारस में, चाहे रामानंद राय को, चाहे यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य से, इन सब शिक्षाओं को पूरे विश्व में लोग अध्ययन करेंगे इनका, लाइक दैट दे विल बिकम द अथॉरिटी टू। और ये शंकराचार्य की जो टीका है या जितने उल्टे सीधे भाष्य हैं, अभी तो उनके बाद भी कितने सारे भाष्य आ गए, श्री चैतन्य महाप्रभु बिकम द सोल अथॉरिटी। अभी तो हमें लगता होगा, इतना नहीं लगता होगा, लेकिन बाद में लोग इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे। पर भक्ति शास्त्र, मैं प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभुपाद स्टूडेंट प्रीचिंग के बारे में लिख रहे थे, किसी एक भक्त को, मेरा नाम तो नहीं याद, कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ाने के लिए एक एक्रेडिटेड कोर्स चालू किया लाइक दैट, और एक किसी वेल विशर टीचर को को टीचर बना दिया उसका, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा एक वेल विशर शुभ चिंतक या हितैषी जो थे, ऐसे व्यक्ति को टीचर बनाया और वो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ाते थे। प्रभुपाद बहुत खुश हुए कि जो है मेरी किताब पढ़ी जाएगी। और तभी हम देखते हैं चैतन्य चरणामृत लिखने से बहुत पहले ही श्रील प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नाम की जो है बुक निकाल दी थी, तो उसके अंदर रूप गोस्वामी को शिक्षा दी गई, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी गई, जो प्रकाशन से वार्ता हुई, जो रामानंद राय से चर्चा हुई, और जो सार्वभौम भट्टाचार्य से। तो चैतन्य महाप्रभु की जितनी मुख्य शिक्षाएं हैं उस सबको चैतन्य श्रील प्रभुपाद ने कंपाइल करके ऑलरेडी बुक के अंदर पहले ही दे दिया था। चैतन्य चरणामृत में तो बाद में आई, वो बुक पहले लिख दी थी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य द गोल्डन अवतार, द गोल्डन इंकार्नेशन, है कि नहीं। तो इसलिए जो है, तो महाप्रभु का जो प्रीचिंग आया, इवन चांद काजी को जो प्रीचिंग किया, ग्रेजुअली दिस विल शुड, हम भक्तों का कर्तव्य भी है कि उसको आधार बना के इन प्रकार के सारे जो भक्ति के जो फिलोसॉफी सिद्धांत है इसको समझ करके और इसको प्रोपोगेट करना बहुत आवश्यक है। और मेरे को ऐसा लगता है भविष्य के अंदर निश्चित रूप से इसको पूरा विश्व जो है पढ़ेगा, यू नो द सब्जेक्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु से जो पढ़ाया, जो शिक्षा दी है उसको। तो और महाप्रभु ने ऐसे बड़े व्यक्ति को भक्त बनाया, इसे सब लोग जान पाए ये कौन है। सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी को भक्त बनाना केवल भगवान ही स्वयं कर सकते हैं। ये कौन है स्वयं? ब्रजेंद्र नंदन जयी शची सुत होइलो से, कि ये भगवान स्वयं कौन है? नंद महाराज के पुत्र, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इस घटना के बाद काशी मिश्र आदि जगन्नाथपुरी के सारे निवासी महाप्रभु के चरण कमलों के शरण में आ गए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य तो हेड प्रीस्ट थे जगन्नाथपुरी मंदिर के, और प्रतापपुत्र महाराज के भी वो गुरु समान थे, और काशी मिश्र भी बहुत अधिकारी व्यक्ति थे महाराज प्रतापपुत्र की गवर्नमेंट के अंदर। इनफैक्ट महाराज प्रतापपुत्र की गवर्नमेंट में महाराज प्रतापपुत्र रोज काशी मिश्र का चरण पाद संवाहन करने जाया करते थे, इतने जो है ऊंचे व्यक्ति थे। तो ये जब चरण में आ गए तो फिर तो सारे के सारे आ जाएंगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से तो और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत खुश हैं और अपनी एक्सट्रेसी को जाहिर करते हुए बोल रहे हैं कि मैं इसका वर्णन बाद में करूंगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य किस प्रकार महाप्रभु की सेवा में सदा लगे रहते थे। महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा जाएंगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछेंगे आप आज्ञा दो, जब वृंदावन जाएंगे तब भी बोलेंगे आप आज्ञा दीजिए। और तो कौन सी लीला विशेषकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में होती है? ये छह परिपाटी करे भिक्षा निर्वाहन विस्तारिया आगे तहा करीब वर्णन। मैं इसका भी विस्तार से वर्णन करूंगा कि किस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य ने भिक्षा देकर श्री चैतन्य महाप्रभु की सम्यक सेवा की, कि चैतन्य महाप्रभु को रोज अपने घर में जो है सार्वभौम भट्टाचार्य बुलाते थे। तो एक बार उन्होंने बोला 30 के 30 दिन महीने में सार्वभौम भट्टाचार्य ने बुकिंग कर दिया कि आपको मेरे घर लंच लेना है, प्रसादम लेना है, भिक्षा जो सन्यासी का। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु बोले कि नहीं ऐसा कैसे, सन्यासी का कर्तव्य अलग अलग व्यक्ति से भिक्षा करें। तो फाइनली वो शायद महीने में 5 दिन पर राजी हुए कि 5 दिन आपको जो है मेरे घर में आना पड़ेगा। तो महाप्रभु बड़े अंतरंग लीला किए सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में, और जगह जगह कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे इस चीज का। और बाद में इन्हीं के जो दामाद थे उसका नाम था अमोघ, तो वो लीला भी हुई कि किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य के जो बड़े ईर्ष्यालु दामाद थे वो चैतन्य महाप्रभु से ईर्ष्या करते थे। तो जब महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे तो वो कमरे में आ गए, बोले इतना खा रहा है, तो सारंग भट्टाचार्य डंडा लेके भागे उनके पीछे, और जो उनकी पत्नी थी बोल रही कि मेरी बेटी विधवा हो जाए चाहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो, और बाद में उसको भी कोई तो रोग हो गया, कॉलरा कोई हैजा, कॉलरा हैजा हो गया उनको। फिर चैतन्य महाप्रभु गए, उनकी छाती पे हाथ रखा कि बोले कि ये जो हृदय है ये तो कृष्ण का निवास स्थान होना चाहिए, आपने इस ईर्ष्या रूपी चंडालिनी को क्यों रखा हुआ इसके अंदर। और चैतन्य महाप्रभु उनके वक्षस्थल पे हाथ रखते हैं हृदय पे, और वो ठीक हो जाते हैं, और बाद में महाप्रभु के अनन्य भक्त बन जाते हैं, और बोलते हैं कि मैं तो कोई अपराध लिया ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप सार्वभौम भट्टाचार्य के रिश्तेदार हो। उनके जो सेवक हैं कुत्ते हैं, श्रीवास को भी यही बोला, और महाप्रभु बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त संबंधित हैं वो सारे मेरे अपने संबंधी हैं, मेरे संबंधी हैं। तो ये लीला को हम भक्तों ने इतने महीनों में सुना, इस लीला को सुनने का जो श्रुति फल है, कृष्ण कृष्णदास बड़े खुश होकर बता रहे हैं, यही महाप्रभु लीला सार्वभौम मिलना, इहा यही श्रद्धा करे कर ये श्रवण, ज्ञान कर्म पाश हैते हय विमोचन, अचिरे मिलये तार चैतन्य चरण। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के मिलन से संबंधित इन लीलाओं को सुनता है, तो वह तुरंत ही मानसिक तर्क वितर्क तथा सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के शरण प्राप्त करता है। हरि बोल श्री गौरांग महाप्रभु की। तो इस लीला को केवल श्रवण करने मात्र से हम सब अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से और जो है फ्रूटिव एक्टिविटी के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, और अचिरे मिले ये तार चैतन्य चरण, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल हमको प्राप्त हो सकते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास श्री रूपदास श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के छठे अध्याय का भक्ति तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति का वर्णन हुआ है, श्री चैतन्य चरितामृत की। तो ये जो मुक्ति शब्द है सुन के हमें भी थोड़ी घृणा उत्पन्न होनी चाहिए, घृणा नहीं तो कम से कम इसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। एक भक्त को हमेशा जो है भगवान के सेवा करने की इच्छा रहनी चाहिए कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की और विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करके हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष चीज मैं कंक्लूड करने से पहले पढ़ना चाहूंगा, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कई कई जगह पे मेंशन करते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी लीला है उसमें महाप्रभु बहुत ही गंभीर लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु लीलाएं हैं, और कोई कोई बिरला जिसको चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त हो वो उसको समझ सकता है। तो उसको समझने के दो एंगल्स कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब हम महाप्रभु की ऐसी लीलाएं देखते हैं उनके भक्तों के साथ में, तो ये अंत्यलीला अध्याय 5 में रामानंद राय के संवाद में ये आता है, महाप्रभु रामानंद राय का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बता रहे हैं कि रामानंद राय गृहस्थ थे, वो लीला आप सबको थोड़ी मालूम होगी चाहे नहीं मालूम होगी, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्रा नामक एक बड़े ऊंचे ब्राह्मण को रामानंद राय से कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा, और चैतन्य महाप्रभु अच्छे से जानते थे कि अपने भक्तों के गुण को किस तरह प्रकट किया जाए, इसीलिए वे एक चित्रकार की भांति इसे अनेक प्रकारों से प्रदर्शित करते हैं और इसे वे निजी लाभ बनाते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पिक्चर बनी है हमारे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, तो सब भक्त बड़े खुश हैं कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की आंखों से जो है प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है। तो अलग अलग मूड्स एक चित्रकार अपने चित्रकारी प्रदर्शित कर सकता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के चरित्र की चित्रकारी कर रहे हैं, कैसे उनके महान गुणों को प्रकट किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य गुण भी है, तो ये तो पहला तरीका है जब महाप्रभु ने भक्तों से डील करते हैं। ये दूसरा गुण है, हे भक्तों, कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनो कि किस तरह वह अपना ऐश्वर्य का गुण प्रकट करते हैं यद्यपि वे अत्यधिक गूढ़ होते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान जो प्रकट हुए हैं इस कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो अस्त्र शस्त्र लेके आए नहीं, सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम, उनके अस्त्र शस्त्र कौन है, उनके संगीगण। तो कैसे वो अपने संगी गणों को इस्तेमाल करते हैं संकीर्तन आंदोलन के लिए, ये चैतन्य महाप्रभु इसको डिपिक्ट करते हैं। तथा कथित सन्यासियों एवं पंडितों के मिथ्या अभिमान को नष्ट करने के लिए वे शूद्र या निम्न कुल के व्यक्ति द्वारा भी वास्तविक धर्म का प्रचार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्न कुल जन्मा गृहस्थ रामानंद राय को वक्ता बनाकर भक्ति प्रेम तथा परम सत्य के विषय में प्रचार किया। फिर स्वयं उच्च ब्राह्मण सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा शुद्ध ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र दोनों रामानंद राय के श्रोता बने। तो रामानंद राय गृहस्थ आश्रम में थे, निम्न कुल में जन्म हुआ था, वो एक गवर्नर थे, लेकिन महाप्रभु उनके श्रोता बने। तो हम सबको उनका किसका अहंकार तोड़ने के लिए जो लोग बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है हमारा और हम बड़े ऊंचे कुल के हैं ये वो, तो उनको जो है उनका घमंड तोड़ने के लिए कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने न यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है रामानंद राय के शिष्य बनने को या श्रोता बनने को राजी होते हैं। हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा ब्रजेर प्रेम रस लीला की बुझिते पारे गंभीर चैतन्य रखेला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के पवित्र नाम की महिमा किसके माध्यम से प्रकट की? हरिदास ठाकुर के माध्यम से, जो कि एक यवन परिवार में मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति का सार प्रकट किया, जो लगभग मुसलमान बनाए जा चुके थे। श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन के प्रेम और दिव्य लीलाओं को प्रकट किया। इन सब पर विचार करने पर भला कौन ऐसा है जो चैतन्य महाप्रभु की गंभीर योजनाओं को समझ सकता है? तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाना ये बड़ी गंभीर उनकी योजना है, इसे हम समझ नहीं सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप अमृत के सिंधु के समान है। इस सिंधु की एक बूंद भी तीनों लोगों को आप्लावित कर सकती है। और फाइनली चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक आज्ञा दे रहे हैं, हे भक्तों, श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का नित्य ही पान करो, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य दिव्य आनंद में डूब सकता है और भक्ति के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनसे हमें बड़ी गहरी शिक्षा प्राप्त होती है, जो बार बार पढ़ने पे चर्चा करने पे समझ आ सकती है। और सार्वभौम भट्टाचार्य के इस प्रसंग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा जो है ये निर्विशेषवाद सिद्धांत का पूरा खंडन कर रहे हैं, जब और प्रकाशन सरस्वती को भी इसी प्रकार इस्तेमाल करते हैं। जब पता लगेगा कि इतने बड़े बड़े लोग चैतन्य महाप्रभु शरण में आ गए तो हमें निर्विशेषवाद को क्यों ध्यान देना चाहिए कि आपके जो जो एपिटॉम थे वो तो चैतन्य महाप्रभु भक्त बन गए, आप सब ये बकवास छोड़ो और भगवान की शरण में आ जाओ इस प्रकार से। तो और चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों के गुण को कैसे प्रकट किया जाए, तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है इसमें अगर हम भी इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, बनने का प्रयास करते हैं, तो ऑल तो हमारी कोई क्वालिफिकेशन हो चाहे ना हो, फिर भी चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल होके जो है हम जैसे लोहे का भी कुछ लोहा भी क्या या कोयले का भी कुछ जो है संभावना है। तो ये बड़ा दिव्य आंदोलन है जिसको पर्सनली चैतन्य महाप्रभु सुपरवाइज कर रहे हैं, और हम अपनी क्षमता अनुसार यदि माध्यम बनने का प्रयास करेंगे तो हम ही दिव्य आनंद के समुद्र में जो है गोते लगाते रहेंगे, नहीं तो भाव सागर के अंदर आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक क्लेश के अंदर सब रहेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की किसी भक्त को टिप्पणी या प्रश्न हो? यू कैन स्पीक लाउड। प्रभु जी का प्रश्न है कि जो श्रुति फल हम सुनते हैं इसमें श्रद्धा की कमी है, इसके कारण हमें ऐसा चैतन्य चरण नहीं मिलता। एक्चुअली जब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग जो पता नहीं, लेकिन जैसे प्रभु जी अभी हमने क्लास में सुना, सिंप्लिसिटी मीन्स हैविंग एक्सेप्टेंस ऑफ लॉर्ड्स अथॉरिटी है कि नहीं, तो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाए जो श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक सुनता है, तो ये कंडीशन जब करेंगे तो निश्चित रूप से दिव्य आनंद की हमें प्राप्ति होगी। और दूसरा जो ये अचिराय लिखते हैं कि शीघ्र ही, तो इसकी ये बड़ा ये नहीं बोला कि 5 मिनट में 10 मिनट में या किताब चैतन्य चरितामृत पढ़ के अध्याय खत्म होते ही बंद किया और आप जो है भव सागर में वो भक्ति सागर में जो है गोते लगाना प्रारंभ करेंगे। तो इसका क्या अर्थ है वो अचिरा मीन्स शॉर्ट टर्म, चिर मीन्स लंबे समय तक, अचिरा मीन्स शॉर्ट टर्म। भव सागर जो है गाय के खुर के समान बन जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ समय तो उसके अंदर लगेगा और बारंबार सुनना पड़ेगा हमें उसे जो है। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। एंड द मोर वील स्टडी द मोर वील रिलिश ऑल्सो, हमारा उतना ही विकास होगा, जितना हम समझ पाएंगे तभी श्रद्धा होगी, समझेंगे नहीं तो फिर तो अंधविश्वास जैसा रह जाएगा। समझ में आए ना है वो एक बात है, मैंने दानवीर महाराज से कष्ट प्रश्न पूछा कि ये दंड भंग लीला को समझा कैसे जाए, तो और फिर एक्चुअली उसके उसी के अंदर एक प्यार आता है जिसमें कृष्णदास गोस्वामी लिख रहे हैं कि दंड भंग लीला परम गंभीर और कुछ तो आगे से ही भक्ति धीर, जो बड़ा धैर्यवान व्यक्ति है वो इसको समझ सकता है। तो मैंने बोला चलो अब समझे कैसे, आगे पीछे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने दानंद महाराज से क्वेश्चन पूछ लिया, वो जो उसी पे लेक्चर देने आए थे और उसके अगले प्यार में था, इवन द मोस्ट इंटीमेट एसोसिएशन लॉर्ड चैतन्य कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स। तो महाराज कहते, देखो लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि महाप्रभु के अंतरंग पार्षद भी उस लीला को नहीं समझ सकते, तो हम किस स्थिति भूली हैं। तो हम जो है इसको रिलीज करेंगे। महाराज ने बोला चलो इस लीला को दोबारा पढ़ते हैं, महाराज लंच प्रसाद लेते हैं, रोज लीला पढ़ते हैं, बोले आज यही लीला पढ़ो फिर से इधर सब। और बार बार जो है महाराज पढ़ रहे थे, सच अम्यूजिंग लीला, और महाराज से उसके अंदर कमेंट्री कर रहे थे। तो मोर वी स्टडी द मोर वी अंडरस्टैंड द मोर वी रिलीश, तभी हम देख पाएंगे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अर्थ क्या है, क्योंकि ये बहुत इंटरनल विषय है एक भक्त की भक्ति के अंदर, व्हाट इज रिलीश इज इनसाइड। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री गौरांग महाप्रभु की, सार्वम भट्टाचार्य की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।